नीति वचन अध्याय 27 पद 1। कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। बहुत सुंदर ये विचार नए नियम में भी लिया गया है। याकूब भी कहता है, तुम जो ये कहते हो कि कल हम क्या करेंगे, वो कहता है तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम या वो काम भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हम ये भी नहीं जानते कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं। यीशु मसीह ने उस मनुष्य के बारे में बताया है जो कहता है, लूका 12 अध्याय 18 से 20 पद, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, इसलिए कल के दिन के विषय में मत फूलो कि क्या करोगे। कल के दिन के विषय में मत फूलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दिन भर में क्या होगा। यीशु कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल के लिए चिंता के विचार मत लाना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। आज का दुख आज के लिए काफी है, इसलिए कल की चिंता मत करो या कल की बात मत करो कि कल मैं ये करूंगा। आप नहीं जानते परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है। अगला नीति वचन बहुत अच्छा है। नीति वचन अध्याय 27 पद 2। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा, तुझे सराए तो सराए, परंतु तू अपनी सराहना न करना। हर जगह अपनी तारीफ के पुल बांधना अच्छा नहीं होता। नीति वचन अध्याय 27 पद 3 और 4। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। क्रोध तो क्रूर होता है, लेकिन जब कोई जल उठता है तब उसके समान कौन खड़ा हो सकता है। जलन बड़ा विनाश करने वाली होती है। नीति वचन अध्याय 27 पद 5। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगला पद भी अति प्रभावशाली है। नीति वचन अध्याय 27 पद 5 और 6। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। नीति वचन अध्याय 27 पद 7। संतुष्ट होने पर मधु की छत्ता भी फीका लगता है। जब आप खाकर छक जाते हैं, चाहे मधु ही क्यों ना हो, तब आप कहते हैं मैं अब और खाना नहीं चाहता। नीति वचन अध्याय 27 पद 7 से लेकर 9 तक। परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। कैसी उत्तम बात है कि किसी का मित्र उसे सच्ची सलाह दे। बहुत लोग हैं दिखावे के लिए सलाह खोजते हैं, लेकिन मन में वे ऐसा नहीं चाहते। वे कहते तो है कि उन्हें सलाह चाहिए। वे आकर कहेंगे, ओह, मैं सलाहकार से बात करना चाहता हूं। उन्हें दिखावे के लिए सलाह की जरूरत है, लेकिन वास्तव में उन्हें सलाह नहीं चाहिए। बहुत दफा लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओ मुझे आपसे बात करनी है। मैं उन्हें समझाता हूं कि मेरे पास बहुत कम समय है जो मैं आपको दे सकता हूं। आरंभ में कलीसियाओं के विकास के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ने लगी थी। कलीसिया के सदस्य प्रेरितों के पास आकर कहते थे, जो लोग कलीसिया में प्रतिदिन की सेवकाई के कार्यक्रम चलाते हैं उनके द्वारा हमारी विधवाएं जो यूनानी संस्कृति पर चलती है कि सुधि नहीं ली जाती है। वे इस बात पर बल देते थे कि पत्रस और यूहन्ना और दूसरे प्रेरित आकर वहां खड़े रहे, जिससे कि जब ये विधवाएं आए तो उन्हें बराबर का भाग प्रदान किया जाए। तब प्रेरितों ने कहा, हम उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जो सुनाम हो, जो ईमानदार हो, इस वितरण के काम को सौंप दे, देखभाल करे, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के लिए अलग रखें। तब उन्होंने स्तिफानुस और फिलिपुस और अन्य पुरुषों को जो सुनाम थे कलीसिया के कल्याण में वितरण के काम पर लगा दिया, ताकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है उस काम को वे स्वतंत्र होकर कर सके। यह है परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के साथ ठहरे रहना, ताकि वो परमेश्वर की सारी मंडली को सिखा सके। हमारी कलीसिया में एक विशेष बात यह है कि हमने प्राथमिकताएं स्थापित की है, और प्राथमिकताएं स्थापित करते समय परमेश्वर ने मुझे सलाहकार के रूप में नहीं बुलाया, उसने मुझे सलाहकार का वरदान नहीं दिया है, मेरे अंदर सलाहकार होने का धीरज नहीं है और ना ही इतनी समझ है। परमेश्वर ने मुझे संसार को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। मेरे ऊपर इतना दबाव है कि वो पूरा कैलेंडर सोमवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक मैं सलाह देने की नियुक्तियों में व्यस्त हूं। बहुत लोग बुलाते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, असाध्य है। इससे मुझे अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए कोई समय नहीं मिलता। इसलिए जब मैं आप लोगों के सामने खड़ा होता हूं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की है। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, ओ मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, हमारे पास कलीसिया में सलाहकार है। हां, मैंने उनसे बात की थी। यदि आपने उनसे बात की थी तो फिर मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? शायद इसलिए कि जो वे सुनना चाहते थे उन्हें सुनने को नहीं मिला। वे सलाह नहीं ढूंढ रहे हैं, वे अपने कामों को करने का समर्थन ढूंढ रहे हैं। ये सलाह खोजना नहीं हुआ। और बहुत से लोग जो दिखाने के लिए सलाह ढूंढते हैं, वे उन कामों को करने के लिए जिसे करने की उन्होंने ठान ली है समर्थन चाहते हैं। तो भी परमेश्वर की सम्मति से मन आनंदित होता है, वो इत्र के समान है। नीति वचन अध्याय 27 पद 10, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। कहने का अर्थ यह है कि तेरा भाई जब दूर किसी स्थान पर हो तो अच्छा है कि सहायता के लिए प्रेम करने वाले पड़ोसी या मित्र के पास जाना, ना कि दूर देश में अपने भाई के पास। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। नीति वचन अध्याय 27 पद 11 और 12। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चलते जाते और हानि उठाते हैं। ऐसी ही बात 22 अध्याय पद 3 में भी कही गई है। लेकिन आपको याद है कि ये नीति वचन हिजकिय्याह के समय के शास्त्रियों द्वारा इकट्ठे किए गए थे और उन्हें इकट्ठे करते हुए दूसरी बार भी वही बात लिखी गई। नीति वचन अध्याय 27 पद 13। जो पराए का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। नीति वचन 20 अध्याय 16 में भी यही नीति वचन है। नीति वचन अध्याय 27 पद 14। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए ये शाप गिना जाता है। वो तो अभी भी बिस्तर में ही है, सुबह 5 बजे उसे आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो कहता है, भाई मैंने तो आशीर्वाद देने के लिए तुझे पुकारा था। बाइबल कॉलेज में एक लड़का मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहता था। उसने लॉस एंजलिस में वर्षों पहले गाने की प्रतियोगिता जीती थी। गायन स्कूल में संगीत प्रशिक्षण के लिए उसे छात्रवृत्ति मिली थी। वो सदैव अपनी संगीतमय आवाज निकालता था। हम उसको यही नीति वचन देते थे क्योंकि वो सुबह शीघ्र उठ जाता था और अपनी जोर से की गई प्रार्थनाओं से आसमान उठा लेता था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर कहता था, परमेश्वर आशीष दे। यदि आप बहुत सुबह उठकर ऐसे कहेंगे तो वो आशीर्वाद नहीं परंतु शाप होता है। नीति वचन अध्याय 27 पद 15। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। ये वचन काफी क्रोध दिलाने वाला और नाराजगी उत्पन्न करने वाला हो सकता है। नीति वचन अध्याय 27 पद 16। जो उसको रोक रखे वो वायु को भी रोक रखेगा, वो झगड़ालू स्त्री होगी। नीति वचन अध्याय 27 पद 16 और 17। और दैने हाथ से वो तेल पकड़ेगा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अच्छी संगति इंसान में अच्छे गुण उत्पन्न कर देती है। नीति वचन अध्याय 27 पद 18 और 19। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे साफ पानी के कुंड में अपनी परछाई साफ दिखाई देती है। नीति वचन अध्याय 27 पद 20। जैसे अधोलोक और विनाशलोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। एक अति महत्वपूर्ण नीति वचन है, आंखों की तरह अधोलोक और विनाशलोक कभी नहीं भरते। यदि मनुष्य आंखों की तृप्ति के लिए चारों तरफ भागे तो वो कभी तृप्त ना होगा। सदा एक विजय दूसरी विजय को खोजती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। नीति वचन अध्याय 27 पद 21 और 22। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। आप कूटते कूटते थक जाएंगे। अगले 5 पद एक साथ जुड़े हुए हैं। नीति वचन अध्याय 27 पद 23 से लेकर 27 तक। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राज मुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है? कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है। पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए है और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। अतः लेखक कह रहा है कि मन लगाकर अपनी कल्याण की ओर ध्यान दे, अपने भेड़ बकरियों की देखभाल भली भांति मन लगाकर कर।